नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्षी के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार वार्ता हो चुकी है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी।
पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।
श्री जायसवाल ने बताया कि ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक हैं और सरकार ने कई भारतीयों को तेहरान से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
जब युद्ध शुरू हुआ तो हम लोगों ने बहुत सारे लोग जो तेहरान में थे उनको हम लोगों ने वहां से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है हमारे एम्बेसी से वो संपर्क करें। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से आर्मेनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस भारत आना चाहते हैं। तेहरान में जो हमारा मिशन है वो पूरी तरह से कार्यरत है और हमारे भारतीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है उनके हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए।
लोकसभा में वर्ष 2025-26 के पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो गई है। इसमें 61 अनुदान मांगे शामिल हैं। सरकार ने 2,81,000 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी देने की मांग सदन से की है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण विश्वभर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये पूरक अनुदान मांगे मौजूदा संकट को ध्यान में रखकर की गई हैं। समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और किसानों की आय बढ़ाने की मांग की। श्री वर्मा ने कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाए। तेलुगु देशम पार्टी के दगुमल्ला प्रसाद राव ने कहा कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। श्री राव ने बताया कि 19,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी किसानों के लिए सहायक होगी। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही एलपीजी संकट पर चर्चा की मांग विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद फिर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बयान दिया। अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि चाहे सदन का नेता हो, विपक्ष का नेता हो या कोई अन्य सदस्य, सभी को सदन में केवल नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बोलने का अधिकार है।
सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वो अपने वक्तव्य दे सकते हैं। किसी माननीय सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है।
राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित हमले की व्यापक जांच कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कच्चे तेल से भरा एक टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते कल सुरक्षित मुंबई पहुंचा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हाल के हमलों के बाद समुद्री क्षेत्र में धीमी पड़ी यातायात गतिविधि के बाद भारत पहुंचने वाला ये पहला जहाज है। मुंबई बंदरगाह के अधिकारियों के अनुसार जहाज में 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल है और इसे ज्वाहर द्वीप पर लाया गया है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत के किरण जॉर्ज का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। इससे पहले महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़ को हार का सामना करना पड़ा। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा पहले ही हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।